اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین انفارمیشن کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو سامعین اس وقت آپ کے اپنے محترم ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب جو ہیں وہ برطانیہ کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک صاحب ایک بار پھر ہم آپ کو ادار آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں
بہت شکریہ جزاک اللہ
ملک صاحب بہت سارے برننگ ایشوز ہیں جو پھر بھی ہم تیاری کرتے ہیں پورا ہفتہ تیاری میں بس لگے رہتے ہیں انفارمیشن ادھر سے لیں ادھر سے لیں اور آپ کے لیے جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ کی مہربانی آپ اپنا ٹائم نکالتے ہیں ملک صاحب پاکستان کے سابقہ آرمی چیف اور سابقہ صدر پرویز مشرف صاحب کو آرٹیکل 6 کے تحت غدار قرار دے کر 5 مرتبہ سزائے موت اور 2 دن تک ان کی لاش کو ڈی چوک پر لٹکانے کا حکم سنایا گیا ہے جس پر ISPR نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے آپ اس کے متعلق کیا تجزیہ فرماتے ہیں
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوی صدق اللہ علی العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین مجھے توقع تھی راج صاحب کہ اس برننگ ایشو پہ آپ ضرور بات کریں گے کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا مشرف کی جو سزا سنے سے مقدمے کا جو فیصلہ ہوا ہے دراصل میں آج پہلی دفعہ آپ کو اس جو مشرف کا جو یہ جو سٹوری ہے اس کے بارے میں کچھ انکشافات بھی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بحثیت ایک فری لانسر کے بہت سی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں جو کہ میں نے اپنے بہت سے آپ کو پتا ہے کہ جس قدر شدید مخالفت میں نے اپنے کالم میں مشرف کی اور اس کے اعمال کی ہے اور اس کے اقدامات کی ہے کسی اور جرنلسٹ نے اتنا بولڈ نہیں لکھا لیکن میں آج اس یہ جو مشرف کے بارے میں جو واقعات ہیں اس کے بارے میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے پہلی دفعہ بلکہ میں نے لکھا ابھی نہیں لکھا بلکہ آپ نے پہل کر دی آپ کے اس پروگرام میں دراصل یہ مشرف کے خلاف جو نفرت پھیلی پاکستان کے اندر اس کی وجہ کیا ہے آپ حیران ہوں گے اس سارے قصے کا جو آغاز تھا ایک گالی سے ہوا تھا اور یہ 13 سال سے یہ قضیہ چل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس قوم اگلے 13 سال بھی اس قوم کا یہ پیچھا نہیں چھوڑے گا یہ واقعہ اگر آپ کو یاد ہو تو وزیر اعظم شوکت عزیز جو کہ اس زمانے میں 2006 میں مشرف کے وہ وزیر اعظم تھے پاکستان کے وزیر اعظم تھے انہوں نے 2006 میں روس کے کنسورشیم کے ہاتھوں نے کراچی سٹیل مل کو 21 ارب 63 کروڑ روپے میں فروخت کر دیا تھا اور اس وقت اس سٹیل مل کے ہمارے بڑے ہی پیارے دوست لیفٹنٹ جنرل قیوم صاحب جو تھے وہ اس مل کے چیئرمین تھے اور انہوں نے اس ڈیل کی مخالفت کی اور اس کے بعد پھر اخبارات میں بڑی خبریں شائع ہوئیں ٹیلی ویژن پہ بھی وہ آئے اپنا نقطہ نظر بھی بتایا انہوں نے اپنی چیئرمین شپ بھی چھوڑ دی پھر انہی دنوں میں یہ ایشو جو تھا یہ سپریم کورٹ پاکستان پہنچ گیا اور ہمارے اس وقت کے جو چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے انہوں نے سوموٹو نوٹس لے لیا اور اپنے حکم کے تابع انہوں نے اس ڈیل کو روک دیا اور کیونکہ شوکت عزیز وزیر اعظم تھے یہ ڈیل مکمل کرانا چاہتے تھے اور اس زمانے میں اگر یاد ہو تو ایم کے ایم جو ہے حکومت کی بڑی اتحادی جماعت تھی مجھے خود ایم کے ایم کے کچھ وزراء نے بتایا کہ اس ڈیل میں کیونکہ کک بیکس لے لی گئی تھی لہذا ہر صورت میں یہ سودا کرانے کے لیے شوکت عزیز جو تلے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے شوکت عزیز نے صدر جنرل پرویز مشرف کے کان بھرنا شروع کر دیے اور آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں مشرف صاحب تو ایک انا اور تکبر اور طاقت کے گھوڑے پہ سوار تھے اور وہ اپنے ہی ہر بات کو ایک اپنا حکم ہی بنا دیتے تھے حکم سمجھتے بھی تھے انہوں نے فوجی طور پہ چیف جسٹس کو وانے صدر میں بلا لیا اور 9 مارچ 2007 کو افتخار چودھری صاحب کو آرمی چیف آف سرارپنی میں طلب کر دیا اب ملاقات تو وقت پہ شروع ہو گئی اب جنرل پرویز مشرف جو تھے اس زمانے میں جو جنرل تھے پوری یونیفارم میں صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے اب افتخار چودھری کو سامنے بٹھا کے سمجھانا شروع کر دیا گیا اب چودھری صاحب سمجھنے والے انسان بھی نہیں تھے انہیں نہ سمجھنے کا کیونکہ انہیں نہ سمجھنے کا مشورہ دیا گیا تھا یہ ذرا غور کر لیں جو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں انہیں نہ سمجھنے کا مشورہ دیا گیا تھا کہ ان کی بات نہیں ماننی کس نے مشورہ دیا تھا میں ابھی آپ کو بتا دوں گا لہذا وہ تکرار شروع ہو گئی بحث آگے نکل گئی مشرف جو تھے وہ غصے میں آ گئے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا اور افتخار چودھری کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس آگے گالی نکال کے کہا تو سمجھاؤ یار اور افتخار چودھری نے جواب میں کہہ دیا کہ جو تم نے گالی نکالی وہ تم ہو وہی گالی واپس کر دی یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا جو بڑھتے بڑھتے کنٹرول سے باہر ہو گیا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور پھر جو ہے اسی غصے میں چیف جسٹس کے خلاف ریسٹ دائر کر دیا گیا کہ اس کو इससे पहले कहा गया कि तुम इस्तीफा दो इस मामले में। अब इस सारे मामले बैठे हुए थे वहां पे, तो वहां उस जमाने में अगर आपको याद हो तो जनरल इश्फाक परवेज कैनिंग, तो जनरल कैनिंग जो थे वो DGISI थे, उनको भी बुला लिया गया, बाकी सहूलतकार भी पहुंच गए, और ये तमाम हजरात जितने भी थे उन्होंने चीफ जस्टिस पे इस्तीफे के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। अब दबाव डालने वालों में सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसने अपने हाथ पर तो बड़ा बड़ा नो लिखा हुआ था, और वो बार बार अपना हाथ चीफ जस्टिस के सामने लहरा रहा था, और हाथ और वो दो हर्फ जो थे वो वही सिर्फ चीफ जस्टिस की बात ताकत थे, चुनाचे वो इफ्तिखार डट गया। और 9 मार्च 2007 की शाम उसी हाथ ने इफ्तिखार चौधरी को आर्मी चीफ हाउस से निकाला और चीफ जस्टिस हाउस में अरेस्ट कर दिया गया। ये हाथ इसके बाद 11 दिसंबर 2013 तक, अब मैं जो तारीखें बता रहा हूं इनको जरा आप, मैं चाहता हूं आपके सामने इनको लिख भी लें याद भी रख लें ताकि ये किस्सा उनकी समझ में आ जाए। ये हाथ इसके बाद 11 दिसंबर 2013 तक इफ्तिखार चौधरी की मदद, बाकायदा मदद करता रहा खुफिया तौर पर। वकला की तहरीक के दौरान भी जजों के साथ था, उसने 2009 में इफ्तिखार चौधरी की बहाली में भी अहम किरदार अदा किया था, और चीफ जस्टिस भी गाय बगाए उस हाथ की कानूनी और आईनी मदद भी करते रहे। बहरहाल ये किस्सा मुख्तसर के जनरल प्रवीण मुशर्रफ की एक गाली ने उनके जो रेत का जो सारा महल था वो धड़म से गिरा दिया। आपको पता ही है कि वकीलों की तहरीक शुरू हुई, मीडिया ने खुलकर जजेस बहाली की तहरीक का साथ दिया, और मुल्क जो था वो आपको पता है अनार्की की तरफ चलना शुरू हो गया। अब उसी जमाने में लाल मस्जिद का वाक्य भी पेश आ गया। अब जनरल प्रवीण मुशर्रफ कमजोर से कमजोर होते चले गए, और ये तारीख का सबक है कि डिक्टेटर जब कमजोर होते हैं तो ये गलतियों पर गलतियां करते चले जाते हैं। मुशर्रफ ने भी गलतियों की लाइन लगा दी, बेनज़ीर भुट्टो कुछ से भी मुलाकात में मजबूर हो गया, एनआरओ भी उनके साथ कर लिया गया, फिर जब बेनज़ीर वापस आई जरदारी के साथ तो फिर शाह अब्दुल्ला के दबाव पे नवाज शरीफ को पाकिस्तान की इजाजत दे दी गई। वर्दी जब उतारी तो पीपल पाकिस्तान जो पीपल पार्टी थी उन्होंने इकतार को तस्लीम तो कर लिया, लेकिन यह है कि जरदारी ने अपनी अंदर खाते काम करते करते उनको इस्तीफा देने में मजबूर कर दिया। अब ये फौज के जो नए चीफ मुकर किए गए जनरल कियानी, उन्होंने बचाने की हतमकान कोशिश तो की, लेकिन जनरल मुशर्रफ जो थे हवाओं की तब्दीलियों के बावजूद खुद को ना बड़ा बैन अवी लीडर समझना शुरू कर दिया था उन्होंने, इसलिए उन्होंने इसी जोम में जनरल कियानी से भी बिगाड़ ली, और जिसका अंजाम फिर एक तवील खुआरी और इबरत शक्ल में निकला। अब जनरल मुशर्रफ की जो मैं बात बताऊं, मेरी ना चाहते हुए भी इनसे एक दफा मीटिंग हुई, लंबी मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में उन्होंने तस्लीम, हालांकि मैं खिलाफ लिखता था, मुझे उन्होंने उस पर तबसरा भी किया, उन्होंने कहा कि तुम बहुत पहले शिकायत की भी तुमने, तुम मेरी बात को समझते नहीं हो, लिखते हो ऐसा, देखिए बहरहाल, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने यह तस्लीम कर लिया मेरे सामने कि मैं ट्रैप हो गया था और मुझे जान बूझ कर इफ्तिखार चौधरी से लड़ाया गया था। दरअसल इस लड़ाई का मकसद जो था मुझे फारग करना था, और पीपल पार्टी की हुकूमत के दौरान जनरल कियानी, मुशर्रफ कहते हैं कि मैं यानी पीपी की हुकूमत के दौरान जनरल कियानी को मुशर्रफ के लिए बुलाता था, और ये दो दो तीन तीन घंटे मेरे पास बैठा रहता था, मैं बोलता रहता था, ये चुपचाप सिगरेट पीता रहता था, यहां तक कि मैं थक कर खामोश हो जाता, ये उठता मुझे सल्यूट करता और चुपचाप निकल जाता था। जनरल मुशर्रफ इस जमाने में जनरल कियानी से बहुत नाराज भी थे, और ये समझते थे कि जनरल कियानी अगर मुझे फर्क करने के साथ में शामिल नहीं था तो फिर भी उन्होंने मेरी मदद तो नहीं की, इसलिए अगर ये चाहता तो मुझे बचा सकता था जनरल कियानी, लेकिन मुझे बचाया नहीं। अब हम इंसान दुनिया में हर चीज तब्दील कर सकते हैं राय साहब, लेकिन हम गुजरे हुए वक्त को तब्दील नहीं कर सकते। इंग्लिश का एक मुहावरा है कि माजी को कुदरत भी तब्दील नहीं कर सकती, यानी तहम आज के जमाने में बैठकर हम माजी का तजिया तो जरूर कर सकते हैं, ताकि जो सवाल आपने मुझसे किया है, मैंने ये कुछ चीजें तारीखी आपके सामने इसलिए रखी ताकि लोगों को पता चले कि इसका आगाज कहां से शुरू हुआ। आप खुद सोचें, अगर प्रवीण मुशर्रफ 9 मार्च 2007 को ताकत के घोड़े पर ना बैठता, ये तकबर का शिकार ना होता, चीफ जस्टिस को ना बुलाता, अगर बुला भी लिया था उसके मुंह से वो गाली ना निकलती, और चीफ जस्टिस के इख्तलाफ को करुण तरीके से हल करने की कोशिश की जाती, तो यकीन कीजिए आज शायद तारीख मुख्तलिफ होती, प्रवीण मुशर्रफ को एमरजेंसी भी ना लगानी पड़ती, हमारी तारीख के माथे पर NRO जैसा बदतरीन धब्बा भी ना लगता, ये PCO जजेस का हल्फ भी ना होता, अब यकीन करें लाल मस्जिद का सानिया भी ना होता, बेनज़ीर भुट्टो भी हल्फ नहीं ना मारी जाती, ये पाकिस्तान में जो TTP बनी थी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ये भी ना बनती, और मुल्क में ये खुदकुश हमले भी शुरू ना होते, और हमने इस जंग में जो 70,000 पाकिस्तानी शहीद किए हैं, मुमकिन है ये भी हम इतनी बड़े तलाफी से, इतने नुकसान से बच जाते। अब आप देखें उस वक्त मुल्क की मैशियत, सनत और कारोबार भी जो कि बूम पे जा रहा था, वो अचानक डिक्लाइन होना शुरू हो गया। उसी जमाने अगर आपको याद हो तो जब ये इफ्तिखार, जैसे इफ्तिखार को बहाल कर दिया गया, तो उसके फौरन बाद आप देखें कि यूसुफ़ गिलानी जो, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और मैं कहता हूं कि अगर उस वक्त मुशर्रफ अपनी गाली ना निकालता तो ना यूसुफ़ गिलानी डिस्क्वालीफाई होता, ना मियां नवाज शरीफ आज लंदन में अस्पताल इलाज के लिए मौजूद होते, ना असद अली जरदारी इतना बीमार हो जाता जिनके उनके बारे में कहा जाता है उनका दिमाग सिकुड़ गया है, और जनरल मुशर्रफ को भी आज ये सजा ना सुनाई जाती, क्योंकि एमरजेंसी ना लगती तो फिर सजा कैसी होती, और जुडिशरी और फौज के दरमियान जो लाइन भी ना खींची जाती, जो जो आपने कहा ना ISPR ने अपना रद्दमल कहा है, तो ये भी रद्दमल ना होता अगर एमरजेंसी ना लगी होती। मैंने ये माजिया का तजिया इसलिए किया है कि पिछले 13 बरसों के तमाम अहम वाकयात के पीछे जनरल परवेज मुशर्रफ के हरफ से निकली वो 3 अरफी गाली थी, जिसकी वजह से आज हमें ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। अगर जनरल परवेज मुशर्रफ उस अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते तो ये आज भी मुल्क में होते, मुल्क भी बहुत आगे जा चुका होता। लेकिन क्या करें, तारीख बताती है कि बादशाहों से या हुक्मरानों के मुंह से निकले हुए लफ्ज होते हैं तारीख के सारे धारे बदल दिया करते हैं। कौमों के हर अरूज सवाल के पीछे बादशाहों का एक तकबर होता है जो उनको बर्बाद कर देता है। हालांकि यही चीफ जस्टिस इफ्तिखार थे जिन्होंने प्रेम शरीफ के माशाल्लाह को लीगल भी किया, और बल्कि वो कुछ भी दे दिया जो उन्होंने नहीं मांगा था। जस्टिस इफ्तिखार ने बगैर तौर मुशर्रफ के इस बात की भी इजाजत, आइन में तब्दीली की भी इजाजत दे दी, हालांकि मुशर्रफ ने यह बात पूछा भी मांगा भी नहीं था। उसी इफ्तिखार साहब के साथ जो झगड़ा हुआ तो फिर देखे वो कहां, बात कहां से कहां तक पहुंच गई। अब मियां नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2013 में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा बनाया था, और वजीर आजम के हुक्म पर सेक्रेटरी दाखिला उस शाहिद खान जो थे वो मदई बने इस मुकदमे में, और फिर स्पेशल कोर्ट ने 24 दिसंबर 2013 को मुकदमा शुरू कर दिया। 31 मार्च 2014 को फर्दर जुर्म आयद कर दी गई। अब ये देखें कि मुकदमा ये 6 साल चला, 125 समाअतें हुई इसकी, 6 बार बेंच टूटा और बना, 7 जजों ने मुकदमा सुना, अदालत ने 6 बार जनरल प्रेम मुशर्रफ को बयान रिकॉर्ड कराने का मौका दिया, मगर जनरल प्रेम मुशर्रफ 1 बार सिर्फ अदालत में पेश हुए, और 15 अक्टूबर 2018 को उन्हें वीडियो लिंक की सहूलत तक दे दी गई, मगर जनरल प्रेम मुशर्रफ ने बयान देने से इनकार कर दिया। अब जनरल प्रेम मुशर्रफ की वजह से 2014 में हुकूमत और फौज के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गए, धरने भी शुरू हो गए। जनरल नवाज शरीफ ने इन्हें AFIC में भी रखा। आपको याद है जी मुशर्रफ अदालत की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ये उस अस्पताल की तरफ चले गए, और फिर खुद मुशर्रफ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जनरल राहील और नवाज शरीफ के दोनों की यानी बकायदा तौर पर तावर से मैं मुल्क से बाहर आया हूँ, बकायदा जनरल राहील ने मुझे हुकूमत से डील कर मुझे बाहर भिजवाया है, और आज मुशर्रफ बहुत शदीद बीमार हैं, और मैं आपको उनकी बीमारी चलिए आज बता देता हूँ कि उनकी हड्डियों की जो प्रोटीन है उनके खून में मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ छोटी और पतली होती जा रही हैं। आज उनकी तस्वीर देखो तो पहचाने नहीं जाते, बार बार अस्पताल पहुँचाए जाते हैं, और ये उसके बावजूद मसाइल पैदा करते जो हैं चले जा रहे हैं। अब आप देखिए कि अब उन्होंने जो अपने डेथ बेड के ऊपर जो बयान दिया है वो भी सुनने के लायक है। ये आज भी दीवारों की मुशर्रफ आज भी दीवारों के टकराव की वजह बन रहे हैं। ये वो कांटा है मुशर्रफ जो सिस्टम के हलक में फंस चुका है। अदालत अगर फैसला ना देती तो ये केस अदालत के चेहरे का धब्बा बन जाता है, और अगर फौज अपने सबक आर्मी चीफ के साथ खड़ी ना होती तो ये फौज के हर पर हर पाता, फौज की इज्जत पर हर पाता है। फिर चुनाचे अदालत ने फिर 17 दिसंबर आज से 5 दिन पहले फैसला सुना दिया, और जो फैसला है उसका जो पैराग्राफ 66 है वो बड़ा खौफनाक लिखा गया है चंद लाइनों का, और उसी पे फौज ने वाली ISPR जिसका आपने इशारा किया अपने बड़े गम और गुस्से और इस तरह का इजहार कर दिया है। ये गम और गुस्से का सिलसिला अगर रुक जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर ये इससे भी आगे जाता है तो फिर एक नया बहरान पैदा हो जाएगा। मुल्क के 2 मुख्तदर अदारे एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे, हुकूमत दरमियान में आकर पिस जाएगी। हुकूमत अगर फौज के साथ खड़ी नहीं होती तो ये फौज की हमदर्दी खो देगी, और फौज की हमदर्दी खोती है तो फिर उनके पास हुकूमत नहीं रहती। اور اگر یہ ادویہ صاحب نہیں دیتی تو پھر یہ اخلاقی مدد سے محروم ہو جائے گی. اب یہ دیکھیے کہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ عمران خان ساری زندگی آپ ان کے پرانے بیان نکال کر دیکھ لیں, عمران خان خود مشرف کو یعنی مقدمہ چلانے کا کہتا تھا, ہائٹریزم میں اس کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کرتا تھا, اور صرف مشرف کو نہیں اور جرنیلوں کو بھی کہتا تھا کہ اس کا جو دوسرے ساتھ جرنیل ہے ان کو بھی سزا دی جائے, کورٹ میں لایا جائے. آج بھی اپنی ہر دوسری تقریب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا حوالہ دیتے ہیں کہ تم سے پہلے امتیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ وہ طاقتور کو چھوڑ دیتی تھیں اور غریب کو پکڑ لیتی تھیں. یہ پچھلے دنوں جو کھوسا صاحب سے جو ہوا جو معاملہ ہوا یہی تو ہوا ہے. مطلب نواز شریف جب ملک سے باہر نکلے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے مطلب انہوں نے یہ بیان دے دیا نام لے کے کھوسا کو بھی اور جسر گلزار کو بھی کہ ہم آپ کو وسائل بھی مہیا کرتے ہیں, آپ امیر کا انصاف اور غریب کا انصاف میں جو فرق ہے وہ ختم کریں. اس سے اگلے دن ہی آپ کو پتا ہے کہ کھوسا جو ہے وہ میڈیا پہ آ کر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ہمارے اوپر نہیں یہ ڈالے, آپ خود آپ نے خود نواز شریف کو باہر بھیجا ہے, آپ ہمیں سب بقاعدہ بتایا ان کا کہا آپ ہمیں طاقتور کا روب نہ دیں, ہم نے اس سے پہلے دو وزرا اعظم کو ایک کو جو ہے ڈسکوالیفائی کیا ہے اور ایک کو نااہل کر کے چھوڑ دیا ہے اور تیسرے کا بھی فیصلہ آنے والا ہے. اور جب انہوں نے ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ اسی وقت ہی میں سمجھ گیا تھا کہ جو مشرف کے خلاف جو باڈی لینگویج ان کی بتا رہی ہے مطلب بڑا سخت فیصلہ ان کے خلاف آنے والا ہے. اگر پھر آپ یہ دیکھیں اکثر ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ چرچل, جہاں میں رہ رہا ہوں اس ملک میں برطانیہ میں, چرچل کا ایک قول بھی بڑا دہراتے ہیں کہ اگر ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو برطانیہ کو کچھ نہیں ہوگا. لہذا یہ اگر آج عدالتوں کو چھوڑ کر جنرل پرویز مشرف کا ساتھ دیتے ہیں تو عمران خان اپنی بچی کھچی جو ان کی کریڈبلٹی ہے وہ بھی کھو بیٹھیں گے. چنانچہ اس وقت چھری خربوزے کو اوپر گرے یا نیچے گرے نقصان تو بہرحال خربوزے کا ہوگا. اب مجھے خطرہ ہے کہ حکومت اس ایشو کو بھی بحران بنا دے گی, عمران خان کی بابرکت ہاتھ لگنے کی دیر ہوگی, آپ دیکھیں گے اس ڈور میں پھر اتنے گنجل پڑ جائیں گے کہ پھر آپ اس ملک میں پانی پت کی لڑائی جو ہے وہ بھی بھول جائیں گے. پھر تیسری بات میں آپ سے ایک اور عرض کروں, یہ جو پیراگراف 66 کی جو میں نے بات کہی آپ سے, اس میں جو تین لائنیں سیٹھ وقار جس سیٹھ وقار کی جو آئی ہیں لوگ اسے اختلاف تو بہت کر رہے ہیں, اور یہ دیکھیں کہ یہی لائنیں جو ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لائنیں جو ہیں یہ مشرف کے حق میں چلی گئی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس پیراگراف کی وجہ سے مشرف جس کے خلاف پچھلے کئی سالوں سے انتہائی نفرت اور حقارت چل رہی تھی, اس فیصلے 66 کے فوراً بعد اب اس کے حق میں مشرف کے حق میں وہ چلا گیا, لوگوں کی ہمدردیاں بھی شروع ہو گئی ہیں. کراچی میں آج جو ہے ایم کے ایم جو وہ جلوس نکال رہی ہے اس کے حق میں, کراچی میں اس نے سارے پل بند کر دیے, جلسہ کر رہی ہے, اور بھی لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ مشرف کے حق میں جو فیصلے مشرف کے ساتھ ہمدردیاں شروع ہو گئی ہیں. بڑے بڑے وکلا جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جس وقار سیٹھ ہے اس کے دماغ کا معائنہ کرایا جائے. پھر جو انہوں نے کہا ہے کہ بھی مشرف کو 5 مرتبہ پھانسی دی جائے, ان کو 5 مرتبہ پھانسی دے کے پھر ان کی لاش کو ڈرائیو کیا جائے, گھسیٹا جائے, اور پھر 2 دن ڈی چوک میں اس کی لاش کو لٹکا رہنے دی جائے. وہ شہر برطانیہ کے جو کرامول کا جو ہے فیصلہ اس کی تلقین انہوں نے اپنے فیصلے میں کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں جس وقار اس بات کو بھول گئے ہیں, وہ جو کرامول تھا وہ پارلیمنٹیرین تھا, اس نے بادشاہ کے خلاف جو بغاوت کی تھی وہ تو خود پارلیمنٹرین تھا, وہ جج نہیں تھا کوئی جس نے یہ فیصلہ دیا تھا. وہ جب پارلیمنٹ کے ذریعے آیا اسے پھر نکال دیا گیا, اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ ہوا, اس نے جنگ بھی کی. میں اپنے ایک کالم میں لکھ چکا ہوں اس بارے میں, پورا اس کا واقعہ لکھ چکا ہوں کرامول کا. پھر جب وہ دوبارہ واپس آیا تو دوبارہ پھر پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا, اس کے بعد پھر اس کو یعنی پھانسی لگائی گئی بادشاہ کو قبر سے نکال کے. لیکن یہ ہے کہ کرامول جب مر گیا دوبارہ جب بادشاہ کی حکومت آ گئی تو پھر دوبارہ انہوں نے کرامول کی بھی لاش کو بھی نکالا, اس کو بھی انہوں نے قبر سے نکال کے پھانسی دی. اب اس بات سے ہم اندازہ کر لیں, میں اکباس کا سوچتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف کا عجیب کمال ہے کہ آپ دیکھ لیں یہ 12 سال کے بعد بھی ہماری سیاسی کرکٹ کے پچ کے پیچھے جو ہے جنرل مشرف جو ہے یہ وکٹ کیپر بن کے کھڑا ہوا ہے. اب ملک چل ہی نہیں رہا, مطلب ہے آج بھی یہ وکٹ کیپر بن کے کھڑے ہوئے ہیں, لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر رہے ہیں, مطلب ہے باوجود کہ ایک لمبی جرائم کی فہرست ہے ان کے خلاف. لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ 2 ادارے جو ہیں آپ کے آمنے سامنے آ گئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ خدا نہ خواستہ خدا خاکم بدن, مطلب ہے یہ فوج ہی تو ہے جس نے آپ کو اس ملک کی یعنی امن کی طرف واپس لائی ہے. اب ہر ادارے نے غلطیاں کی ہیں, یعنی ادارے کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں, بعض افراد کی غلطیاں ہوتی ہیں, लेकिन आप देखेंगे फौज ही, अब आप ये ना भूलें कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी चल रही है। अब अंदाज कीजिए जिस दिन वो फैसला आया मतलब इस मुशर्रफ के खिलाफ, तो मुझे एक फोन आया, मैं नाम ले लेता, इवान रिडली, जो आपको पता है हमारी जो बहन है जो अफगानिस्तान जाके गई थी किसी और नहीं से, फिर वहां से मुसलमान होके आई, वो आजकल यहाँ बरतानी में बहुत बड़ी, आपको पता है दुनिया की बड़ी नामवर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने मुझे कहा कि सुनो फैसला आया, तुमने सुना है, मेरी उसे टेलीफोन पे बात हुई। मैंने कहा जी, मैंने, मुझे पता चल गया इस फैसले का। उन्होंने कहा कि जरा गौर से इस फैसले का जरा उसमें जायजा लेना। मैंने कहा अभी तो फैसला जो है मेरे पास पहुंचा है और 159 सफहात पर यह फैसला है, मैं तो पूरा अभी पढ़ नहीं सका, मैं अभी 30-40 सफहात इसके मैंने पढ़े हैं। उसने कहा कि जो भी हो इस वक्त ये सोच लेना कि तुम्हारी पाकिस्तान की फौज जो है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की जद में आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान ही एक वाहद मुल्क है जो कि एटॉमिक के पास है, और उसके एटॉमिक आर्सेनल जो है वो बहुत ज्यादा खतरा बन गए हैं तमाम दुनिया के लिए भी, और इसी वजह से वो पाकिस्तान से, उनको मुसलमान से खतरा शुरू हो गया है। क्योंकि अब आपको पता होगा कि जब अफगानिस्तान से अमरीका निकला था तो उसके फौरन बाद उन्होंने ये कहा था कि जी हमने एक दुश्मन जो है रूस उसको तो खत्म कर दिया, अब दूसरा दुश्मन जो है इस्लाम है हमारे खिलाफ। अब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका चला तो गया अफगानिस्तान के हशर देखने के, रूस का हशर देखने के बावजूद, अब आप ये देखिए कि वो खुद उसमें परेशान है, वहां पे ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन डॉलर्स का उसका नुकसान हो चुका है, जानी नुकसान भी हो चुका है, वहां से निकलने की कोशिश भी कर रहा है, अब अगर कोई तरह निकल भी रहा है इस मामले में, वहां से अफगानिस्तान से निकल भी रहा है मतलब, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा उसका क्या है। अगर आपने सवाल किया तो मैं उसका भी इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा कि वो वहां पे क्या आजकल चल रहा है। अब ये सारा सिनेरियो देखें आप, इस सारे सिनेरियो के अंदर आपको फिर पता चल जाएगा कि हम जैसे लोग जो कि सारी उम्र मुशर्रफ के इस अमालनामे के खिलाफ लिखते रहे और मुल्क के मफाद में लिखते रहे कि मुल्क को जो नुकसान पहुंच रहा है इसी वजह से मतलब है, और जो इसने जो दूसरों की जंग थी उसमें शिरकत करके अपनी जंग बना दी। आप देखिए कि हमने इस जंग में जो नुकसान किया है, इस अमरीका की जंग में, आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है, मुल्क कहाँ पीछे चला गया है। लेकिन इसके बावजूद आज इसी मुशर्रफ के मुकदमे की वजह से दो बड़े अहम अदारे जो आमने सामने आ गए। ये है एक वो बात, यानी एक वो गाली जो इसके मुंह से निकली, मुशर्रफ के मुंह से, और आज उस गाली जो है वो कहाँ पे हमें ले आई है और दो अदारों के टकराव के सामने ले आई। अगर वहां उस वक्त मुशर्रफ जो है गाली वो ना निकालता, चौधरी इफ्तार उसको वो बर्मला उसका वापस जवाब ना देता, और वो जो हाथ जिसमें नो लिखा हुआ था, जनरल क्यानी का हाथ था, वो नो लिखा हुआ था, वो ना होता मतलब है, और ये साजिश भी ना होती मतलब है, और जनरल क्यानी के हाथ में भी नो लिखा हुआ ना आता, दरअसल ये सारी एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी हुई, ऐसी साजिश हुई है कि जिसका वो मुशर्रफ इस बात का एतराफ करता है, और हमारे मुल्क को आप देखें कहां से कहां तक पहुंचा दिया गया है। ये है आपके सारे सवाल का जवाब। अब देखें, अब हमारी जो हुकूमत जो है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि अब वो फंसी हुई है, अब उन्होंने पहले ये ऐलान किया था कि हम जो जस्टिस वकार सेठ है उसके खिलाफ हम जुडिशियल रेफरेंस भेजने वाले हैं, आज पता चला है कि वो उन्होंने इस बात से हाथ उठा लिया है। फिर एक और बात भी खतरे में आ गई है कि जिस दिन ICPR के DG थे जनरल फूर, उन्होंने जब बयान दिया तो उसके फौरन बाद उसी दिन मुझे व्हाट्सएप पे एक जो इस्लामाबाद बार के जो सेक्रेटरी हैं उनका एक रिटर्न टाइपशुदा खत मिला, जिसमें उन्होंने बकाया तौर पे ICPR को अपने उस बयान में कहा कि आप इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है, और बकायदा इसका अपने जज का उस फैसले का दफा किया, और ICPR के खिलाफ जो आप जनरल फूर के बयान की बड़ी सख्त मुखालफत की। इस वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि अब फिर से दोबारा वो खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है, और आपको पता है कि साथ ही हमारे पड़ोसी भारत ने जो है उसके जनरल, उसका जो चीफ है फौज का, उसने क्या बयान दे दिया है। अब देखिए कश्मीर के अंदर क्या हाल हो चुका है, कश्मीर का हमारे हाल क्या हो चुका है। अब हिंदुस्तान के अंदर जो है खुद उसका जो शहरीत का जो बिल है जो आया है उसने उसको अब खतरे में डाल दिया हुआ है। अब अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान इससे टुकड़े होने जा रहा है, अगर हम आराम से, अगर आप हिकमत से काम लें तो ये हिंदुस्तान खुद अपने बोझ से टूटने जा रहा है जिस तरह रूस टूटा है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ एक फिर से एक खतरा पैदा हो गया है, और आज ये देखिए कि एक और भी पिछले चंद दिनों से खबर चल रही है कि हिंदुस्तान ने जो बाढ़ लगाई हुई थी वो कई जगहों पे बाढ़ को उसको जो है वो हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया है, सुसरा कर देंगे, उसमें सियालकोट भी है, उसमें चुंडा भी है, उसमें और भी इलाके हैं, और फिर परसों जो है वो बकायदा कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर हल्की सी झड़प भी हुई है, और बकायदा तौर पर पाकिस्तान, हमारी पाकिस्तानी फौज ने उसका प्रॉपर जवाब दिया है। अब हालात जंग की तरफ भी है, हिंदुस्तान ने पहली दफा अपने जो मिसाइल हैं वो भी बॉर्डर पर ले आया है, लाजमी बात है कि पाकिस्तान भी उस जवाब के लिए बिल्कुल तैयार है, हमारी फौज ने बकायदा तौर पर ये बात कह दी है। लेकिन एक बात यहां सोचने की और भी है, आप ये देखिए, मैं इस नालायक हुकूमत की तरफ आपको बताना चाहता हूं। अब आप ये देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर पहले जनरल कियानी को, अब जनरल अयूब खान आए माशाल्लाह, उन्होंने अपनी मुलाजमों को खुद ही उसमें एक्सटेंशन दी। जनरल जिया आए, उन्होंने भी एक्सटेंशन दी अपने आप को। याजी ने भी अपने एक्सटेंशन दी, मतलब जिया साहब, उन्होंने भी एक्सटेंशन दी इसको अपने सारे मामले को। मुशर्रफ आया, वो भी एक्सटेंशन देता रहा। फिर हमारी सियासी पीपल पार्टी ने जनरल कियानी को भी मतलब उसकी दी एक्सटेंशन दी और 3 साल उसके बढ़ाए, कभी किसी ने नहीं पूछा। इमरान खान ने भी इस तरह एक्सटेंशन दी जनरल बाजवा को। आप ये देखिए, जब एक्सटेंशन दी गई उस वक्त तो अदालत खामोश रही, लेकिन एन उस वक्त जब के दिसंबर के महीने में उनके खिलाफ भी केस खुल गया, उनके खिलाफ भी एक दरखास्त आ गई कि ये एक्सटेंशन तौसी जो है इसको देखा जाए, ये गलत है। और वो भी बकाया तौर पर आपके सामने पता है कि मुल्क को बकाया तौर पर फिर एक खतरे के सामने खड़ा कर दिया गया। फिर ये इस कॉन्स्पिरेसी को समझने की जरूरत है कि पहले भी आर्मी को यानी किया गया अटैक, और ये नालायक हुकूमत जिसके पास लॉ सेक्रेटरी मौजूद हैं, जिनके पास बेहतरीन कानून मौजूद है, जिन बेहतरीन कानूनदान मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल मौजूद है, वज़ीर कानून मौजूद है, इन तमाम के होते हुए वो एक ऐसा नोटिस नहीं जारी कर सके, ऐसा नोटिफिकेशन नहीं बना सके कि जिसकी वजह से आप देखिए फिर वो यानी खतरे में पैदा हुआ है, फौज को जो है मुर्दाजाम ठहरा के इस तरह फौज की बदल उड़ाएगी वहां। एक फौज, आप यकीन कीजिए कि आप इस बात से खौफ मुझे आ रहा है, मतलब है कि हमारे मुल्क की इस कदर मजबूत फौज को अब दोबारा वो इस खतरे, वो इस फौज को तबाह करने के पीछे तुल गए हैं कुछ इदारे। कभी किस तरह, जिस तरह शाम का हाल नहीं देखा हमने, लीबिया का हाल हमने नहीं देखा, क्या हो रहा है मतलब पाकिस्तानी फौज के उन मुसलमान फौजों के साथ क्या हो गया। इसे अगर कोई बेहतरीन मुनज़्ज़म अगर फौज को है तो वो पाकिस्तान की फौज है, फिर एटॉमिक आर्सेनल इसके पास है, ये सोचने की बात है। इसलिए मैंने अर्ज किया ना कि मुझ जैसा आदमी जो है मुशर्रफ की गलतियों के बावजूद मैं चाहता हूँ कि ये मामला आराम से टल जाए, आराम से हो जाए, इस मामले को कर दिया जाए। वो अपनी, जैसे मैंने बताया कि मुशर्रफ तो खुद एक खतरनाक बीमारी में मुबतला है, और मैं बात कहते हुए डरता हूँ अल्लाह ताला जो है वो खुद आदिल भी हैं, फैसला करने वाले भी हैं। अल्लाह ताला के हाथ में इस मुल्क को, मैं इस मुल्क की सलामती के लिए मैं आप चाहता हूँ कि इसको बड़े आराम से इसको जो है इस बड़ी अकलमंदी के साथ, दर्शमंदी के साथ इस मामले को जो है वो टैकल किया जाए। तो ये है आपके सवाल का मुफसल जवाब, जो मैंने पहली दफा आज बहुत से इंकशाफात किए हैं आपके प्रोग्राम के अंदर।
मलिक साहब, आपने तो इतना जवाब, इस तरह मदलल जवाब दिया है, तो इस पर तो 4 दिन लग सकते हैं मुझे सवाल करते हुए। जितना कुछ आपने कहा है और जितना कुछ मटेरियल आपने हमारे सामाइन के साथ शेयर किया है, जो आपने एनालाइज किया है, मैं आपकी बात को ऑन करता हूं कि जब आपने जनरल कयूम साहब का जिक्र किया तो मैं आपकी उसको इंकशाफ को थोड़ा सा वजन डालने की कोशिश करूंगा। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं इतना कोई पढ़ा लिखा भी इंसान नहीं हूं कि उस वक्त स्टील मिल जो है वो प्रॉफिट में जा रही थी, ये मैं बिल्कुल। और जनरल कयूम जो है वो काम कर रहे थे जिस तरह डॉक्टर कदीर साहब, उस तरह वो काम करते थे, तेजी से काम कर सारे मामलात को निपटाते थे। फिर शौकत अजीज साहब को लाया गया, फिर इस तरह के हम सुबह उठते हैं तो हमें पता चलता है हमारे मुल्क का वजीर आजम तब्दील हो गया, सदर तब्दील हो गया, फलां फलां, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और आपने जिक्र किया कि ये जो खुफिया हाथ का जिक्र किया, आप देखें पहले बिल्ड किया गया अपना जस्टिस इफ्तखार साहब, उनका अहमद इतना बिल्ड किया गया कि कौम ने उससे मोहब्बत करनी शुरू कर दी। उसके बाद वो कला जो है वो बाहर आ गए, उसके बाद जो है वो फिर आपने हाथ का जिक्र किया, और उसके बाद फिर जिक्र हुआ, फिर बहुत सारे मामलात हुए, फिर इमरान खान साहब को जो है वो बिल्ड किया गया, फिर सोशल मीडिया को साथ बिल्ड किया गया, बताया गया जरदारी नवाज चोर 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 चोर, इतना कुछ खेला गया कि इमरान खान अब जब कहते हैं कि मैं थोड़ा सा ठीक होने की कोशिश करता हूँ, उनके फॉलोअर उनको कहना शुरू कर देते हैं नहीं तुम्हें तो वोट मिले थे इनको चोर और डाकुओं को अंदर करने के लिए। ये सारा काम सिलसिले में चलता रहा। और उसके बाद आपने जो आप जिक्र किया जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब हकीकी तौर पर बीमार, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने फौज की नौकरी की 40 साल, उन्होंने फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आप जैसे लोग जो है एनालाइज करते हैं। मलिक साहब, मुझे सवाल का अगला सवाल करने से पहले छोटा सा मैं एक जिक्र करूं, क्या अब भी कोई खुफिया हाथ है जिसके हाथ पर कुछ लिखा हुआ है?
बहुत मिलियन डॉलर आपने क्वेश्चन किया है। खुफिया हाथ तो चलते रहेंगे और चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं बकायदा तौर पर। मसला ये है कि हमें बिल्कुल बड़ी मतलब एहतियात के साथ इस मामले को लेकर चलना है। जैसे मैंने अर्ज किया, इस वक्त जो है ये 2 बड़े अदारे हैं हमारे पास, इनके टकराव की सूरत कभी नहीं होनी चाहिए। मतलब है, आप ये देखिए कि बड़ा बैलेंस बयान दिया है ISPR के जनरल फूर ने, उन्होंने कहा कि एक अदारे का वकार होता है और हमारा एक वकार है, द ऐसे मसला ये नहीं है। मैं देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक छोटी सी मैं एक लतीफ से बात शुरू करता हूं। एक आदमी था, उसका भाई फौत हो गया, वो बहुत रो रहा था, उसको दफना के आ गया, फिर भी बहुत रो रहा था, लोगों ने उसे सब्र का दरासा दिया। तो कोई बात नहीं भाई, मतलब हम सब जितने भी यहाँ गाँव में लोग हैं, हर घर में कई की मैतें हो चुकी हैं, अब लोग आराम से सब्र करो, अल्लाह ताला इसका अजर देगा तुम्हें। उसने कहा नहीं, मैं अब भाई को अब नहीं रो रहा, मैं तो इस बात को रो रहा हूँ कि इसराइल ने अब मेरे घर का रास्ता देख लिया है। अब जनरल शुएब, हम जो शुएब टीवी पे आकर कह रहे थे कि सजा के हमें इतना इतने मुखालिफ नहीं है जो मुशरफ सजा देगी, हम इस बात के मुखालिफ हैं कि मुशरफ को बड़ा गद्दार करार दिया गया है। अब आप ये देखें कि उन्होंने, मुशरफ ने उस आइन, जिस मतलब आइन जो आर्टिकल 6 है, वो आप देखिए उस आर्टिकल 6 के बारे में, वो तो पहले मतलब पहले जब उसने एमरजेंसी लगाई थी उस वक्त तो ये आर्टिकल 6 नहीं था, ये तो उसके बाद में वजूद में आया। फिर कानूनी तौर पे कानूनी मुश्काफियां तो बकमदानी ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये कि जो एक जुर्म पहले हो चुका हो उसके बाद में कानून आया गया, तो फिर पुराने जुर्म को नहीं देखा जाता, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह के आप, मैंने आपसे अर्ज किया कि जिस तरह आप उस जनरल साहब ने पैराग्राफ लिख दिया है 66 मतलब है, उससे तो मुशरफ के हक में हमदर्दियां लोगों शुरू हो गई हैं, लोगों ने मजारे करने शुरू कर दिए मुशरफ के हक में। आप ये देखिए, आप ये देखिए ना कि अब यानी किस तरह मुल्क ले जाया जा रहा है। एक तरफ वकला हैं जो कहते हैं कि फैसला दुरुस्त है, और दूसरा आवाम जो है वो जस्टिस जुलूस निकालना शुरू कर दिया उन्होंने, अब मुशरफ के हक में आना शुरू हो गया है। अब बहुत से वकला जो है वो जस्टिस वकार के फैसले के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं बिल्कुल गलत है, हमारे आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। अब ये जो 3-4 लाइनें डाली गई हैं इस फैसले में, ये जो स्टेट वकार की, इससे तो मुशर्रफ को फायदा पहुंचेगा, ये कभी फांसी नहीं होगी, आप मेरी बात याद रखें, ये फांसी नहीं होगी। लेकिन ये है कि ये टेंशन जो बढ़ाई जा रही है फौज के अंदर और अदलिया के अंदर, और मुल्क जो है इसको जो बर्बाद करने का माजल खाक बदन जो कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है, यही वजह। अब देखिए, अब मसला कश्मीर कहाँ रह गया है? मसला कश्मीर का नाम ले रहा है कोई? मतलब हिंदुस्तान ने इतना बड़ा जो किया, मतलब कश्मीर जो है मकबूजा कश्मीर, अब वो अब रेडियो श्रीनगर का नाम ऑल इंडिया श्रीनगर कहा जाता है, श्रीनगर ऑल इंडिया कहा जाता है, कश्मीर का नाम ही खत्म कर दिया गया है। फिर हमारे यहाँ भी अफवाहें फैलने शुरू हो गई हैं कि आजाद कश्मीर का ये जो सदर है, मतलब फारूक हैदर, ये आखिरी सदर है, इसके बाद आजाद कश्मीर को भी सूबा बना लिया जाएगा, कश्मीर का नाम खत्म कर दिया जाएगा, यानी कश्मीर के मसले को खत्म करने के लिए ये अफवाहें भी चल रही हैं। अब आप ये देखिए ना, कश्मीर का मसला एक तो बहुत पीछे चल गया, बैक बर्नर पर चला गया। अब हिंदुस्तान ये कुदरती अमर है कि मोदी की तरफ से ये हमाकत हुई, जिससे मुशरफ से हमाकत हुई, मोदी ने शहरीत का बिल जो उसमें किया, उस जो लाया, उसके खिलाफ जो है हिंदुस्तान की 5 स्टेट्स जो है उन्होंने इनकार कर दिया उसको मानने को। चीफ मिनिस्टर बनर्जी जो इतनी मशहूर है, उन्होंने इनकार कर दिया, और जो कांग्रेस है वो बकायदा तौर पर इसमें शामिल हो गई है इस तारीख के अंदर। बड़े बड़े जो दानश्वर है वो भी, उन्होंने अब अमरीका के अंदर भी, कांग्रेस के अंदर भी कमेटी ने इस बिल को टेकआउट कर लिया है कि ये जो कर रहा है ये बकायदा तौर पर हिंदुस्तान को जो है ये इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसके बारे में यानी बात हो रही है बकायदा तौर पे। और क्योंकि अब अमेरिका भी इसको बचा नहीं सकता, क्योंकि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप है, उनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट तहरीक शुरू हो चुकी है, मुआवजे की तहरीक आ चुकी है, वो भी वो खुल के इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मसला तो चल रहा है। अब देखिए ना, पाकिस्तान एक ऐसी मौजूदा रियासत है जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, ये शहदाई हैं जो कि ऐन मुसीबत में अल्लाह के पास पहुंच जाते हैं और अल्लाह से मिन्नत समाजत करते हैं। आप हम जैसे लोग भी गिड़गिड़ाते हैं सजदों में जो है, अल्लाह से रोते हैं गिड़गिड़ाते हैं कि या अल्लाह पाकिस्तान की खैर हो, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसी सबील पैदा कर देता है। वो गरना हमारे मुल्क के अंदर आप देखिए कि मैं अभी, आपने मेरा आज का मज़मून पढ़ा होगा जो मैंने लिखा है, और कौन लोग हो तुम, तो उसमें मैंने बकायदा जो 5 मैंने बताए कि हमारे मुल्क की तबाही के जिम्मेदार, उसमें आप देख लें अवाम भी इसमें शामिल है, हम अवाम भी जो है ना, अवाम भी इसमें शामिल है। लेकिन यह है कि खुद अमाल वाल अमाल, जैसे हम, जैसे हमारे अमाल होंगे, जैसे हम अवाम होगी, वैसे हमें हुकाम भी मिलेंगे। खराबियां तो अवाम के अंदर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन यह कि हुकूमत को ऐसी नहीं मिली आज तक। अब ये वजह है, अब शरीर का कानून हिंदुस्तान में आया है, कश्मीर का मसला और पीछे चला गया है। लेकिन अब हिंदुस्तान जो है 5 महीने से ज्यादा हो गए कर्फ्यू लगाए हुए कश्मीर के अंदर, अब कश्मीर के अंदर सूरत हाल भी धमाका खेज होती जा रही। आप देखेंगे जिस दिन कश्मीर को थोड़ा सा इन्होंने कर्फ्यू हटाया, वहां भी खून रेत साधन होने का खदशा है। और ये जो बकायदा तौर पे आप देखेंगे महाजरीन का सिलसिला फिर शुरू कर दिया जाएगा, ये जो शहरी कानून के मुताबिक जो है मुसलमानों को जो निकाला जाएगा, तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल के पाकिस्तान में फेंकने की उसकी कोशिश है ना कि फेंका जाए। मतलब पानी उसने बंद करके रखा हुआ है आपका, कश्मीर भी उसने कब्जा कर लिया हुआ है, शहरीत का बिल ला के उसने मुसलमानों को वैसे ही नाटका बंद कर दिया है, और चीन के साथ भी अपने तलकात बहुत बढ़ा रहा है। मतलब आप देखिए चीन इस बारे में बिल्कुल खामोश है, हर ममालिक के अपने 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 बेनिफिट्स होते हैं, उसके मुताबिक वो चलते हैं। लेकिन हम खुदा ना खासा खाक मदन वो कौम है कि हम अपने जिस्म पे खुद ही तेल डाल के खुद ही आग लगाते हैं, ये ऐसा मसला बन गया हुआ है।
मलिक साहब, हम तो ये समझते हैं कि जब भी यूरोप या दुनिया अमेरिका किसी लीडर की तारीफ करता है तो समझ आती है कि वो लीडर अपने पाकिस्तान के लिए उतना मुखलिस नहीं है जितना दूसरों के लिए। आपने देखा होगा क्योंकि आप लिखते रहते हैं, आप इन लोगों में उठते बैठते हैं, अभी कभी आपने दुनिया के बाहर के मीडिया को देखा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ लिख रहे हैं? कतन नहीं लिख रहा, लेकिन वो सारी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, अपने मेमोरी में रख रहे हैं। एक तरफ जस्टिस इफ्खार साहब को बिल्ड किया गया, उनके फैसलों की तारीफ होती थी, शादियाने बजते थे मीडिया पर, उसके बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार आ गए, उनके शादियाने बजते थे, उनके फैसलों को माना जाता था। पहले हमें पता ही नहीं होता था मुल्क का चीफ जस्टिस है कौन, और उसके बाद खोसा साहब, इतने केस आए, पानामा बीच में आया, सारी चीज़ें आई, फैसला देने वालों में ये शामिल थे, अब उन्होंने फैसला किया तो फिर जनाब मीडिया पे जो वार शुरू होगी, तकसीम शुरू होगी। मलिक साहब, हमें ये लगता है कि खुफिया हाथ, आपकी बात बिल्कुल अब वो निकलेगी नहीं दिमाग से जो आपने कही है कि कोई ना कोई खुफिया हाथ है, और हम जैसा जो है थोड़े अक्ल का मालिक, मैं आपसे कितने प्रोग्रामों में ये सवाल कर चुका हूँ, पिछले 10-12 साल से ये बात मुतवातर दोहरा रहा हूँ कि निशाना हमारी पाक फ़ौज है और हमारा एटम बम है, ये क्यों नहीं समझ आ रहा हमारी पाक फ़ौज को और हमारे जो सरबराने मुमलिकात हैं और चीफ जस्टिस बनते हैं? मलिक साहब,
बस आपने अपने सवाल के अंदर खुद ही जवाब दे दिया, एक सवाल निशान छोड़ दिया आपने। अब ये अवाम का मामला है, अवाम जो है वो आइंदा सोचे और खुद फैसला करे, मतलब जिन जिसको वो लाए हैं उनके पीछे कौन सी साजिशों की वजह से वो लोग हम पे आते हैं हुकूमत करने के लिए।
मलिक साहब, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। मलिक साहब, मलेशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म इमरान खान की अदम शिरकत पर तुर्की के सदर अर्दकान ने जो धमाका खेज बयान दिया, इस पर पाकिस्तान में सऊदी अरब स्वाद खाना का भी रद्द अमल आया है, इसके बाद पाकिस्तान की जग इंसाई को आप किस निगाह से देखते हैं मौजूदा हालात में?
लगता है राय साहब आपने बड़ी खूब तैयारी की है आपने इस प्रोग्राम के लिए, बड़े ही बर्निंग क्वेश्चन आपने अपने इस प्रोग्राम में रखे हैं।
मलिक साहब, पूरा हफ्ता होता है,
गुजारिश यह है कि इस समिट में पाकिस्तान की गैर मौजूदगी को बात करते हुए तुर्की के जो सदर रजब तैयब अर्दगान थे, आपको याद होगा कि आपने पिछले हफ्ते भी मुझे ये सवाल किया था, उस वक्त मैंने जो बात कही थी उसके अर्दगान ने आके जो है हमायत की है। आप ये देखिए, तुर्की सदर अर्दगान ने जुमे को, यानी दो दिन परसों की बात है, मीडिया में आके ये कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के इजलास में गैर मौजूदगी बारे में जो है उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा तो नहीं लगता, अगर ये दोनों ममालिक शिरकत करते तो ये समिट और ज्यादा मजीद कामयाब होता। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा है कि सऊदी अरब दबाव डालता है, ये इन ममालिक की आदत है कि ये दूसरे ममालिक पर बाज़ इकदाम करने या ना करने के लिए दबाव डालते हैं। अब अर्दोगान ने इशारा भी कर दिया कि सऊदी अरब में क्योंकि 40 लाख पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, सऊदी और UAE जो पाकिस्तानी को उन्होंने वापस भेजने की धमकी दी और अपने जो कर्जा था वो भी वापस जो दिया था मतलब वो भी वापस लेने का कहा, और उसके बजाय उन्होंने सऊदी ने यह भी कहा कि हम पाकिस्तान के निकाल के जितने बांग्लादेशी हैं उनको फिर से नौकरी दे देंगे। अब इन माशी मुश्किलात की वजह से पाकिस्तान को ऐसी धमकियां माननी पड़ती हैं, और फिर उन्होंने अर्दोगान साहब ने यह भी तासर दिया कि ऐसी धमकियां इंडोनेशिया को भी दी गई क्योंकि इंडोनेशिया नहीं गया उस समिट के अंदर। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि ये प्रपोजल जो था इस समिट का अक़वामे मुत्तहिदा की, जब समिट हुआ था वहां पे इमरान खान साहब ने ये मतलब प्रपोजल दिया था और कहा था कि हम ये इस्लामोफोबिया इसके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पे हम एक नया चैनल भी लॉन्च करेंगे, हम ये OIC का हमने देखा OIC, इसमें तो कोई शक नहीं कि OIC एक मुर्दा घोड़ा बन चुका है और सऊदीया उसकी क्यादत कर रहा है। हम पाकिस्तानियों को इस बात में बड़ी शदीद तकलीफ है इस बात की कि उन्होंने कश्मीर के मामले पर जो खामोशी इख्तियार की अरब ममालिक ने, UAE ने, सऊदी अरब ने, ना सिर्फ खामोशी इख्तियार की बल्कि जख्मों में नमक पाशी करने के लिए मोदी को बुला के उनको बड़े बड़े मेडल दिए, उसको मेडल दिए गए। फिर ये कि हाल में उसके बाद अभी रिसेंटली रियाज कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, सऊदी ने बकायदा तौर पे $126 बिलियन की हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट भी की। हम तो चाइना की 60 बिलियन की जो है वो उसमें बगले बजा रहे हैं, तो अकेले सऊदी ने चाइना से दुगनी से भी ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट वहां पर कर दी हिंदुस्तान के अंदर। इस तरह कुवैत ने उसमें इन्वेस्टमेंट की है, UAE ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, कम से कम $225 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है हो चुकी है, 4-5 मुल्कों की वहां पर हो चुकी है। अब आप ये देखिए कि तकलीफ तो हमें भी है, लेकिन बात यह है, अगर आपको याद हो कि यमन की जंग के सिलसिले में सऊदी अरब ने हमसे फौज मांगी थी और जनरल रहील ने आमादगी का इजहार कर दिया था, लेकिन नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया उस वक्त। तो उस वक्त तो ना हमें 40 लाख पाकिस्तानी फौज की धमकी मिली, ना ही हमारे तलकात खत्म हुए, तलकात भी ठीक है, ये कैसा वजीर आजम जो दबाव के नीचे आ गया। मैं बहुत सी कौमी राज अफशां से खौफ ज्यादा होते हुए मैं नहीं बताना चाहता, ये ऐसे ऐसे दबाव जो है ना वो चलते नहीं है। ये सऊदी अरब को जो सौदा बड़ा महंगा पड़ता मतलब है और महंगा पड़ सकता है, लेकिन हमारे हरमैन वहां पे हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जब शदीद मुश्किलात में फंसा हुआ था, माशी मुश्किलात में, तो सऊदी आगे बढ़ा, उसने हमें कर्जा दिया और यूएई ने भी हमें उसमें दिया मतलब वो जो हमारे से उसमें हमारे खजाने में पैसे रखे ताकि हमारी जो है क्रेडिबिलिटी जो है इंटरनेशनल बैंक में दुरुस्त हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि हम सऊदी अरब को भी, लेकिन बात यह है कि अगर आपने ये समिट बुलाना था तो इससे पहले आप सऊदी से बात करते। अब सऊदीया की ईरान के साथ नहीं बनती हम सब जानते हैं, कतर के साथ नहीं बनती हम जानते हैं, वो किस तरह अपने दुश्मनों के साथ बैठेगा अब सऊदीया भी मतलब है। मैं बावजूद सऊदीया की जो तुम्हें तकलीफ पहुंची मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं एक बड़ा यानी एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सच्चा जो तजिया देना चाहता हूं आपके प्रोग्राम में कि जिस तरह हम हिंदुस्तान के साथ नहीं बैठ रहे, ये अलग बात है कि जिस तरह हमारी पाकिस्तान की हिंदुस्तान की दुश्मनी है, ऐसी दुश्मनी तो सऊदीया की अपने इन ममालिक से नहीं है, ना होनी चाहिए क्योंकि ये भी ब्रदर इस्लामी ममालिक है। लेकिन होना तो ये चाहिए था ना कि इमरान खुद को यानी बहुत समझते थे मतलब, पहले मुतारे भी किए ईरान और सऊदी अरब के दरमियान यानी जो मामला चल निकला था उसको खत्म करने के लिए, तो पहले इस समर को बुलाने के लिए पहले वो ये काम करते, इन्होंने सुलह कराते, फिर बाकायदा तौर पर सऊदी अरब को इस बात में आमादा करते कि समर में आता, या फिर वो जो OIC की जो कमजोरियां हैं या तो उनको दूर करते और ये नया समर ना होता। अगर वो भी नहीं आप करते तो फिर दूसरे ममालिक को हक पहुंचता है वो अपना एक समर ऐसा करे। अब ये देखिए अब फिर एक तो ये बात होगी, दूसरी तीसरी बात ये कि अगर सऊदी अरब ने बाकायदा से धमकी दी भी थी तो इमरान खान को क्या जरूरत थी कि वो उर्दगान को भी ये बात बताता और मलाशिया को भी बताता, कोई सफारती जुबान इस्तेमाल कर ली जाती। सफारती जुबान आप इमरान खान साहब ने चुगली की फौरी तौर पर, मुझे इसलिए कहा गया है और इसलिए मैं जो है हमारे से मजबूरी है इसलिए मैं नहीं आना चाहता। अब आप ये बताइए क्या इस दबाव के आप नहीं गए वहां पे तो क्या आप मलेशिया और तुर्की की दोस्ती से महरूम नहीं हो गए? आपके दुश्मन पहले क्या कम है आप? ये तो अलग बात है कि यानी ये उन लोगों का बड़ा महातिर मोहम्मद का बड़ापन है, उसने बावजूद आप शामिल नहीं, उसने बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान में बड़ी शदीद तनकीद की कश्मीर के मामले में भी और शहरीत के मामले भी, और इतनी सख्त तनकीद की कि हिंदुस्तान ने बाकायदा तौर पर मलेशिया के सफीर को बुला के बड़ा सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने कहा कि हम इसको ये जो महातिर मोहम्मद के जो बयानात हैं हम इनको अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखल समझते हैं। ये इसके बावजूद ये आप वहां गए भी नहीं, आपने इंसल्ट भी की उन लोगों की इस समिट की भी, हाँ जी, इसके बावजूद उन्होंने ऐसा बयान दिया आपको, इसकी वजह से कि उनको पता है कि दुनिया में वाद इस्लामी कुव्वत वह पाकिस्तान ऐसा है जो कि एटमी कुव्वत है, इस्लामी कुव्वत है, ये तुम्हारे वो इसलिए आपके पीछे आपके साथ खड़े, आपके पीछे भी खड़े हैं आपके आगे भी वो खड़े हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये ऐसा दबाव नहीं लिया करते जो खुद मुख्तार मुल्क होते हैं, कर्जे मिलते हैं कर्जे लिए हैं आपने मतलब है, ऐसा ऐसी बात नहीं है कि वो आदमी कह रहा कि हमने यानी ऐसा नहीं कि हम आपके 40 लाख आदमी निकाल देंगे। लेकिन आप देखिए कि सऊदीया ने सऊदी पाकिस्तान के अंदर जो उसको सफारतखाना है उसने बकाया तौर पर इसकी तरदीद कर दी, उसने कहा कि हम दोस्त मुल्क हैं हम ऐसी धमकियां नहीं दिया करते। लेकिन बात यह है कुछ ना कुछ तो है ना मतलब है, ये पिछले प्रोग्राम में डिटेल से मैंने आपसे बात कर दी थी, अब तो खुल के सामने आ गई है। तो ये सारी चीजें हमारी इसमें भी हमारी कमजोरी है, हमारी खारजा हुकूमत कमजोरी है। हम चाहते तो इस मामले को किसी अच्छे तरीके से टैकल कर सकते थे, लेकिन पता नहीं हमारे इन लोगों की अकल को कौन मतलब है, इनकी अकल जो है घास चरने गई हुई है क्या है मतलब है, लोगों को ऐसी अकल देता नहीं मतलब है। पाकिस्तान के अंदर भी अंदरूनी मुल्क भी मुश्किल से दो चार हैं और अपने बयान से अपने अमल से दो चार कर रहे हैं, और जो मुसलमान ममालिक रह गए हैं दो चार जो हमारी मदद करने वाले उनके साथ भी इनके तलका जो खराब करने पर तुले हुए हैं। तो ये है आपके सवाल का जवाब जो मैं समझता हूँ, जो मेरा एनालिसिस है वो यही है।
मल साहब मैं आखिरी सवाल बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल ज़मीनी सवाल आपसे करता हूँ, ये जो पाकिस्तान के मीडिया में जो चैनल्स पे एंकर साहिबान बैठे होते हैं तो इनके पीछे कौन सा खुफियात है?
देखिए एंकर हजरात तो बहुत मामूली अफराद होते हैं, जब आपके मुल्कों के सरबरा और वजारा और बड़े बड़े जनरल जो हैं वो उन पे असर चल जाता है, उन पे जादू चल जाता है, वो दबाव में आ जाते हैं, तो ये एंकर हजरात क्या है? इन एंकर हजार का तो आपको पता नहीं है कि कई दफा एक खास एक छोटा सा ट्राइकोन जो है बैरिया का मालिक जो है रियाज, आपने नहीं पर आपने देखा नहीं कई दफा लिस्ट सामने आ चुकी हैं
जी मलक,
कौन सा ऐसा एंकर है जिसने रियाज से कुछ प्लॉटिंग लिया और रिश्वत नहीं दी? बकायदा अकाउंट में अकाउंट के नंबर आए, पैसे जितने दिए वो भी आ गए, हर चीज सामने आ गई। मतलब तो आप देखिए कि जब आप हम लोग जो है किसी से जर्नलिस्ट जो आजकल जो है किसी से प्लाट भी लेगा करोड़ रुपए का फायदा भी लेगा तो वो कैसे बोल सकता है? होना तो ये चाहिए ना कि हमारे यहाँ पूरा आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। अब कौन आदमी है जो इतनी ज्यादा सच्ची बातें करेगा? जो आप मुझे हमेशा ही हर हफ्ते जो है मुझे आप मैदान में ला खड़ा करते हैं, पता नहीं आप मुझसे क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मतलब मुझे सच्ची बात यह है कि
मलिक साहब सच्ची बात करनी
चाहिए। मुझे इकबाल का शेर याद आ रहा है कि अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं जहर हिलाहिल को कभी कह ना सका कन। गुजारिश ये है कि आप देखिए, मैं आपसे मैं गर्ज करूं, इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही, बड़ी खूबसूरत बात इकबाल ने अपने फारसी शेर, फारसी का शेर है, मैं उसका तर्जुमा आपसे रखता हूँ। उसने इकबाल ने कहा कि ये कौमी मुतहद्दा इदारा जो है इसके बारे में कहा कि उसका ये तो फिरंगी है, दूसरे जो लोग हैं ये तो तुम्हारे दुश्मनों का डेरा है, यहाँ पे जहाँ पे तुम्हारे खिलाफ फैसले होंगे। आप क्या समझते हैं कि कौमी मुतहद्दा हमारे कश्मीर में लेके देगा? आप क्या समझते हैं कि हमारे बर्मा के मुसलमानों का ये कौमी मुतहद्दा मसला हल करेगा? आप क्या समझते हैं गजा का फलस्तीन का मसला हल करेगा? मतलब कौमी मुतहद्दा मतलब है हमारी हालत, इकबाल कहता है हमारी हालत वो हो गई है इस वक्त कि जब बास के पंजों के अंदर कोई परिंदा आ जाता है तो परिंदा कितना भी चू चा करे अकाब पे उसमें कोई असर नहीं होता, अकाब नहीं उसे छोड़ता है अपने जो पिंजों में लाए हुए। मुसलमानों को इन अकवाम तंत्र के पंजों में उन्हें दबोचा हुआ है, वो किस तरह आपके जब तक आप खुद ताकतवर ना हो। फिर इकबाल ने खुद भी कहा इस बात को, उसने कहा कि अगर तुम चाहते हो ताकतवर होना तो तुम्हें फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे दमन में पनाह लेनी पड़ेगी, दरबार में हाजिर होना पड़ेगा। मुराद ये हाजिर होने मुराद ये है कि आपको उस कुरान पे अमल करना होगा, उस कुरान को अपना हाकम बनाना होगा, अल्लाह के कुरान को अल्लाह के कानून को अपना अपने मुल्क का कानून बनाना होगा। वहां तो यानी अल्लाह से बगावत करते हैं, अल्लाह के रसूल की बातों से बगावत करते हैं। फिर मुझे ये बताइए जब जिन चीजों से आप बगावत करते हैं तो उससे मदद किस मुंह से आप मांगते हैं? हमें भी तो कुछ चाहिए ना। मतलब आप इया का ना अब्दू इया का नस्ताइन का हर तकरीर में कहते थे, हम उसी से मदद, इसका मतलब ये कि हम उसी से अल्लाह से मदद मांगते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। लेकिन आपने या कनाउ पढ़ने के बाद आप IMF के दरबार पर भी आप सजदा किया, आपने इंटरनेशनल बैंक भी सजदा किया, आपने अमेरिका के आगे भी आपका सजदा है, सऊदी अरब के आगे सजदा है, UAE के आगे भी आपका सजदा है, कहाँ कहाँ आपने सजदे नहीं किए? खुद आपका असद उमर जब वजीर खजाना था उसने खुद TV पे आके ये कह दिया, उसने कहा कि मैंने इमरान को कहा था कि हमें IMF के साथ जाने की जरूरत नहीं है, हमारे हालात इस तरह ठीक होते जा रहे हैं सऊदी अरब से पैसे लेने के बाद कि हम अपने हालात जो अपने काबू कर सकते हैं, अब ये मजीद जो हमारे जो एक्स्ट्रा अखराज है उनको खत्म कर दिया जाए और फला फला। उसने TV बकायदा के कहा आके उसने, मतलब लेकिन उसने कहा कि इमरान खान ने खुद जो है वो उसने फैसला कर लिया कि नहीं हम IMF में जाएंगे, इसलिए उसने वजारत खजाना छोड़ दी, सबसे राइट हैंड था असद उमर। लेकिन मसला ये है ना कि खुद एक दफा बयान दे देते उसके बाद फिर दोबारा नमक चाट पत्थर से सर फोड़ के फिर दोबारा उसी नमक चाटने के लिए वापस भी आ जाते हैं। मतलब मसला ये है कि जब तक अब हम अंदाजा कीजिए कि हम इयाक नअबदू इयाक नस्ताइन पढ़ते भी हैं नमाज में, हम ये भी कहते हैं कि हर तमाम दुनिया के तमाम जितने खजाइन हैं इसका मालिक अल्लाह है, ये मानते जानते हुए भी हम अल्लाह है उसको और वो उसके हाथ उसके अल्लाह के कब्जे कुदरत में हर चीज है, हत्ता कि हमारी सांस तक उसके कब्जे कुदरत में है। लेकिन एक तरफ हम कहते हैं मुंह से कहते हैं, लेकिन अमल हमारा ये है कि हम दुनिया के जो यहूदियों के जो बड़े बड़े बैंक हैं सूदी अदारे हैं वहां पे हम चले गए, हमारी दो अमली जो हमें मार रही है जी।
मलिक साहब, अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला का अमल शुरू हो गया है, इस पर आपका क्या तबसरा है?
बड़े बाखबर साफी हैं जी आप, ये तो मीडिया में भी नहीं आया, प्रेस में भी नहीं आया, लेकिन आपने हकीकत आप बाहर निकाल कर रख दी है। बात यह है कि अगर आपको याद हो जब इमरान खान साहब जो ट्रंप साहब से मिले थे, पहले मुझे ये बताइए आपके पास कितना वक्त है उस वक्त में इस जवाब, आपने सवाल बहुत बड़ा,
आप जवाब दें।
अच्छा, बात यह है कि जब इमरान खान साहब ट्रंप के साथ जाके मुलाकात की थी वहां पे उन्होंने एक बयान दिया था, ट्रंप ने कहा था सारी दुनिया के मीडिया के सामने कि अमेरिका को दूर अफ्तादा खितों में लाहासल जंगों में मुलव्वस नहीं होना चाहिए, और ये उसी वक्त हम समझ गए थे कि अब ये जंग हार चुका है, अमेरिका पुरानी हार चुका है, अब ये किस तरीके से अपने नाक को बचाने के लिए से निकलना चाहता है और आसान और सेफ रास्ता मांग रहा है, इसी वजह से उसने पाकिस्तान को इस काम पर लगाया। और ये वाकई सही बात आपने कही कि अमरीकी हुकाम अफगानिस्तान से फौजियों को बड़ी खामोशी से निकाल रहे हैं। अब एक अमरीकी अहदेदार ने आके CNN पे बता दिया आके कि अमरीका ने एक साल के दौरान अफगानिस्तान से 2000 फौजियों को खामोशी से निकाल लिया, और ये खुद अब उन्होंने इतराफ़ किया, अगर इतराफ़ ना करते तो फिर तो बात ना कही जा सकती, और ये खामोश इनखला काबुल हुकूमत के इल्म में है। और इस हवाले से बाजाबता दस्तावेजी कार्रवाई भी की गई। यानी ये इनखला जो इस एतबार से बड़ा हैरत अंगेज है कि तालिबान से किसी बाजाबता मादे की मंजिल को करीब करने के लिए अमरीका ने इस इनखला जो अमल में लाया गया है ताकि जो तालिबान से बाजाबता मादे हो रहे हैं उसको कामयाब किया जा सके। अब अफगानिस्तान में जो अमरीकी फौजी जो एक जनरल तैनात है, आला कमांडर है जनरल ऑस्टिन एस मिलर, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि एक साल के दौरान 2000 अमरीकी फौजियों को हमने वापस तो भेज दिया है अमरीका, और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर जो है अमरीकी फौजी तादाद जो है 12,000 रह गई है। यानी अमरीका ने तालिबान से मुजाकरात के दौरान इस बात पर रजामंदी जाहिर की थी कि अमरीकी फौजियों की तादाद 8,000 तक लाई जाएगी, और अफगानिस्तान अफगान और अमरीकी हुकाम ने इस बात की इसलिए तस्दीक भी कर दी है इस बात की जो आपने सवाल किया है बाकी निकाल रहे हैं। इसलिए अमरीकी वजीर दफा मार्क एस्पर जो है उसने भी अफगानिस्तान के हालिया दौर में ये बात कही थी और मीडिया पे भी आई कि अगर हम वहां अमरीका की फौजों की तादाद 8,000 तक भी ले आए तो तब भी हम जो है ये दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे जो ऑपरेशन है उनमें कुछ ज्यादा मनफी असर मुरतब नहीं होगा। अब जैसे मैंने पहले शुरू में अर्ज किया कि ट्रंप चाहता है कि अमरीका दुनिया भर में जो अस्क्रम जो जंग उसकी चल रही है इससे वो किनारा कश हो जाए, इस हवाले से उसकी उनकी बेताबी को समझना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आप देखें कि अमेरिका में आइंदा बरस सदारती इंतखाब होने वाला है, ऐसे में अगर कहीं लड़ाई जोर पकड़ गई और अमेरिकी फौजियों की लाजमी बात है कि उनकी हलाकतें वाकई होने शुरू गई तो ट्रंप का तो दोबारा फिर मुंतखब होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी ट्रंप की बेताबी देखते हुए अमेरिकी हुकाम ने अफगानिस्तान से ज्यादा अमरीकी फौजियों को इस इंतखाबात से पहले ही बुलाने की तैयारी शुरू कर दी है, और तालिबान से मुजाकरात के दौरान अमरीकी हुकाम ने चाहा है कि अब किसी ऐसे मौके पर दस्तखत हो जाए कि जिसके तहत अफगान सरजमीन पर एक खास तादाद में अमरीकी फौजी जो तैनात जो है वो रखना मुमकिन हो जाए, लेकिन तालिबान अब भी इस बात पर नहीं राजी हो रहे। वो कहते हैं कि हम आखिरी फौजी अमरीका का वो भी नहीं रहने यहाँ पर नहीं रह सकता। अब हिंदुस्तान और अफगान हकाम को ये खदशा पैदा हो गया है, ये गौर से सुनिएगा जो मैं नुकता उठाने लगा हूँ, ये बड़ा जबरदस्त नुकता है आपके सामीन के लिए भी, कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान हुकूमत को खदशा पैदा हो गया कि तालिबान से किसी बाज़ाब्ता मुआहदे के तय पाने से कबल ही अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के खामोश इनखला का एक वाज़ेह मतलब ये है कि अमरीका जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर अपनी पोजीशन कमजोर कर चुका है। अगर अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की तादाद इसी तरह गैर मामूली हद तक कम हो गई तो फिर तो तालिबान पर दबाव नहीं डाला जा सकेगा और ना ही अमरीका कोई उनसे बात मनवा सकेगा। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान बहुत सी चीजें ऐसी जो वो कहते हैं अमरीका से कि ये बात मनवाई जाए, लेकिन वो तो नहीं मनवाई जा सकेगी, और साथ ही साथ अमरीका के लिए अफगान फोर्सेस को जो एंटी टेररिज्म के हवाले से खसूसी तरबियत जो जो दी जा रही वो भी खत्म हो जाएगी। अब अमरीकी और अफगान हुकाम ने बताया, दोनों ने बताया है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज को पूरे मुल्क की सलामती के हवाले से जिम्मेदारी संभालने के काबिल बनाना अमरीकी फौज का एक बुनियादी मकसद तो रहा है, लेकिन अब हमारे बस में नहीं रहा कि अभी बकाया तौर पर अफगानिस्तान की फौज को मुद्दा खड़ा कर सके। यानी खामोश इंखला का मतलब ये भी ले लिया जाए कि अमेरिका अब इस बुनियादी मकसद जो जिसका वो बार बार बहाना कर रहा था कि हम अफगानिस्तान की फौज को इतना तैयार करना चाहते हैं अफगानिस्तान संभाल ले, अब उसकी भी वो केयर नहीं करेंगे, अब वो इसलिए निकल रहे हैं। और लाजमी बात है, अब आप ये देखिए ना, एक और मैं बात दर्ज कर दूँ कि फॉक्स न्यूज में पिछले दिनों में एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें ट्रंप की जुबान आप समझिए कि उनके मुँह से एक बात निकल गई, उन्होंने कह दिया कि अफगानिस्तान में जो हमारी फौजियों की तादाद 12,000 नहीं है बल्कि 9,000 है, और उसी से तालिबान ने यह अखज कर लिया कि अमरीका अब किसी बाजार तो मादे का इंतजार करने की बजाय अफगानिस्तान से चुपचाप निकलने को तरजीह दे रहा है और निकल रहा है। अब आप देख लें कतर में मुज़ाकरात कई दौर हुए हैं, अमरीकी जो मुज़ाकरात थे उनकी कोशिश रही कि तालिबान को वो किसी ना किसी तौर पर इस बात पर रजामंद कर लें कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौज को एक खास हद तक जो है रहने की इजाजत दे दी जाए, और वो तालिबान को ये यकीन भी देना चाहते थे कि वो अफगानिस्तान की बहबूद के हवाले से बड़े संजीदा हैं और तालिबान के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, मिलकर रहेंगे और अफगानिस्तान की हुकूमत को सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन हमें यानी एक सोर्स ये भी बता रहे हैं हमें कि अमरीकी जो मुज़ाकरात हैं और तालिबान ने मुज़ाकरे बुनियाद में जो मादा जो मसौदा तैयार किया था जिसमें इस बात की जमानत फराहम की गई थी कि 5 महीनों के अंदर कम बेश हम 5,500 अमरीकी जो अफगानिस्तान फौज छोड़ देंगे, और इसके जवाब में तालिबान ने सिर्फ इस बात की जमानत मांगी थी कि तालिबान जो है वो सिर्फ जो है तशद्दुद करना रोक कर जो तर्क करते मतलब है जी, यानी वो हमले करना छोड़ दें उनके ऊपर मतलब है। अब तालिबान से अमरीकी हुकाम का मुज़ाकरा सितंबर में अचानक खत्म हो गया, आपको याद होगा कि ट्रंप ने बिल्कुल एक प्लग ही खींच लिया था उस मुज़ाकरात का, हालांकि मुआहदे का मसौदा तैयार हो चुका था اور اس وقت سے لے کے آج تک امریکی حکام یہی تاثر دے رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے مذاکرات تو ختم کر لی ہیں لیکن طالبہ سے رابطے مکمل طور پہ ہمارے ختم نہیں ہوئے اور کسی نہ کسی شکل میں بات چیت جاری ہے. اور یہ لاسٹ اکتوبر کے مڈل میں افغانستان کے لیے امریکہ کے جو خصوصی نمائندے ہیں ذلمے خلیزاد, آپ دیکھ لو اس وقت سے لے کے آج تک وہ کئی پاکستان کے اسلام آباد کے دورے کر چکے ہیں, افغانستان میں جا چکے ہیں اور در پردہ وہ کام معاہدہ جو ہے وہ چل بھی رہا ہے. اب افغان حکومت کی ایک شکایت یہ بھی تھی کہ امریکہ کو فوجوں کی تعداد گھٹانے کی بجائے طالبان سے بات کرنی چاہیے تھی کہ یعنی ہمیں وہ مذاکرات میں شامل کریں, لیکن طالبان جو ہے اس بات پہ راضی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں اصل فریق تو امریکہ ہے, افغان حکومت ان کی پپٹ حکومت ہے. اب جب لاسٹ ایئر مطلب جنوری میں اشرف غنی نے افغانستان میں اخراجات کم کرنے کی جو ٹرمپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ امریکی فوجی حکام کو فوجی کی تعداد کم کرنے کے حوالے سے ہم طالبان سے کچھ ڈیل نہ بھی کر پائے تو پھر بھی ہم جو ہے اپنے فوجوں کو نکالیں گے تاکہ اس لیے افغان حکومت جو ہے افغان حکومت نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم طالبان سے براہ راست جو ہے بات چیت کر لیں, لیکن کیونکہ طالبان خود بات ہی نہیں کرنا چاہتے اس لیے امریکہ نے کہا کہ وہ جب آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں ہم کیسے یہ جیسا والا معاملہ میں کیسے اٹھا لیا. اب یہ جنرل آسٹر ملر جو بہت پہلے افغانستان میں تعینات تھے انہوں نے کہا کہ امریکی فوجی تعداد اس وقت جو ہے نا 8600 ہے, یہ فوجی افغان فورسز کی اس وقت بھرپور معاونت کر رہے ہیں پوزیشن میں ہیں, اور جنرل ملر جو ہے یہ اسپیشل آپریشن کے آفیسرز ہیں, ان کی شہرت جو ہے ملٹری یونٹس کو کم ہجوم کے ساتھ متوازن رکھنے اور مشن کو ہر حال میں کامیابی سے مکمل کرنے کے حوالے سے بڑی مشہور ہے. اور جنرل ملر نے ایک سال کے دوران افغان مشن کی بڑی قیادت بھی کی ہے اس معاملے میں, اس دوران امریکی فوجیوں نے افغان فوج کے لیے جو عمل جو افغان فوجیوں کے ساتھ جو ان کا ہونا چاہیے تھا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا اس کے اندر بھی تھوڑی سی انہوں نے سختی پیدا کی ہے, اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم ان کی حمایت کرتے رہتے ہیں, ان کو ٹریننگ دیتے رہتے ہیں, یہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ افغان فوجی جو ہے اچانک سارا سرا لے کے طالبان کے ساتھ جا کے مل کے بیٹھ جاتے ہیں, جا کے ان کو اس بات کی بڑا نقصان ہوتا ہے. اب 2010 اور 2011 میں جب افغان جنگ نقطہ عروج پر تھی اس وقت آپ یاد رکھیں کہ افغانستان کے اندر امریکی فوجی تعداد 100,000 سے بھی زیادہ تھی اور اتحادی نیٹو کے اتحادی جو تھے وہ ہزاروں تعداد میں, وہ اس سے الگ تھے. اور سب آپ کو بتایا کہ بڑا ایک عالمی فوجی اتحاد تشکیل دیا گیا تھا جو امریکی فوجی تعداد یعنی وہاں پہ جب بہ گئی تھی, اب وہ سارا تو ختم ہو چکا ہے. اب جب وہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں فوج افغانستان میں کچھ نہیں کر سکی, اب یہ 8500 فوجی امریکہ کے وہاں کے کیا کر سکتے ہیں وہاں پہ. اب انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر اتنی کم تعداد میں افغان حکومت بھی ہندوستان حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ اتنی کم تعداد میں تو بالکل ہی افغان طالبان تو وہ تو بڑے دھڑلے سے وہ کامیاب ہو جائیں گے, وہ آ جائیں گے حکومت سنبھال لیں گے, ہمارے ان کے جتنے بینیفٹ ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. اب اس لیے یہ دسمبر 2019 میں ٹرمپ نے پہلی بار اعلان کیا, آپ کو پتا ہے کہ شام سے بھی انہوں نے اسی مہینے میں پچھلے ہفتے جو ہے امریکی فوجی سارے واپس بلا لیے. انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ افغانستان سے افغانستان سے 7000 امریکی فوجی جو ہے نا واپس بلائیں گے. اب یہ ٹرمپ کا جو حکم نامہ ہے یہ محکمہ دفاع پینٹاگون اور اس میں جو مشرق وسطی کے مطلب جو امریکی کمان ہے وہاں پہ اس کو یہ ٹرمپ نے اپنا آرڈر کیا ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ اپنی اس معاملے میں رائے تبدیل کر لے کہ خالی 1500-2000 فوجی امریکہ کے جو ہے وہ تو ان کو تو طالبان پکڑ کے مار ویسے ہی ذبح کر دیں گے مار دیں گے. اب لیکن شام کی جو بدلتی ہوئی صورتحال پر طالبان نے بھی نظر رکھی ہوئی ہے. اب ٹرمپ انتظامیہ نے ترکی کو کل جنگجوؤں کے خلاف جانے کی کھلی اجازت دے دی, آپ کو پتا ہے, اور جبکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے کئی برسوں یہ کرد تھے یہ امریکی فوجی کے ساتھ مل کے لڑ رہے تھے, لیکن اچانک ہی جو ہے امریکی فوجی واپس باہر نکلا ہے اور کرد جو ہے باقاعدہ طور پہ ترکی فوجی کے رحم و کرم پہ آ گئے ہیں اور ترکی نے وہاں جا کے اپنا جو بینیفٹ تھے وہ اپنے علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے. اب اس حوالے سے جو طالبان کے جو سینئر مذاکرات خیر اللہ خیر خاں ہیں, میں پچھلے دنوں کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا چند دن پہلے, انہوں نے کہا کہ امریکہ دنیا بھر میں اپنے مفادات کی نگرانی کرتا رہتا ہے اور جہاں ایسا ممکن نہ ہو وہاں سے وہ نکل جاتا ہے, اور شام میں انہوں نے حوالہ دیا کہ شام میں کل جنگجوؤں کو چھوڑ دینا اس کی ایک واضح مثال ہے. اب اس خیر اللہ خیر خاں کے اس بیان سے واضح ہو گیا ہے کہ اب جس طرح کردوں کا جو حال ہوا ہے یہی حال اب کابل انتظامیہ کا ہوگا, اشرف غنی کا ہوگا, اس کی فوج کا ہوگا, اور لازمی بات ہے جب طالبان آئیں گے تو ہندوستان کو جو مفادات ہیں اس کو بہت بڑی ذکر پہنچے گی. ہندوستان جو آج تک افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے اس کو بھی لگام ملے گی, اور آپ کو ہندوستان کو اس بات کا بھی خطرہ اور خدشہ ہے جس کا وہ تذکرہ بھی کرتا رہتا ہے کہ جب طالبان کی حکومت آ جائیں گی طالبان پھر یہ ہے کہ صرف افغانستان میں نہیں رہیں گے یا کشمیر کا رخ بھی کریں گے, یہ لازمی بات ہے کہ طالبان کے بہت سے رہنماؤں نے یہ بات کہہ رکھی ہے کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اسلامی رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ، اس لیے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ اس بات پہ ہندوستان کو اس بات کا بھی خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے یہ معاملہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ افغانستان سے جو خاموش انخلا کا جو آپ نے کہا ہے، آپ بڑے باخبر صحافی ہیں، آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، بہت شکریہ۔
ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام
علیکم۔ سمعین، یہ تھے ملک صاحب جو کہ برطانیہ کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ تھے، بات کر رہے تھے، اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے۔
FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔